1921 ईस्वी माघ के महीने में अमावस्या की रात में मेरा जन्म हुआ। मेरी माता और पिताजी ने मुझे बतलाया। पिताजी का नाम पंडित बालेश्वर नाथ तिवारी और माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। वे श्री संप्रदाय के विधिवत दीक्षित वैष्णव थे। वैष्णवोचित संगीत विद्या में वो दोनों ही निपुण थे। पिताजी मल्ल क्रीड़ा, संगीत और सभी प्रकार के सामाजिक विषय में निपुण, नम्र, विनयी और सर्वोपरि वैष्णवोचित आचार व्यवहार में कुशल और धर्म प्राण व्यक्ति थे। जन्म के समय राशि के अनुसार मेरा नाम श्रीमन नारायण तिवारी रखा गया। हमारे कुल पुरोहित ने रखा। जन्म के समय से ही मैं बहुत भोला भाला था। माताजी कहती थी कि तुम रोते नहीं थे, जहाँ पर बैठा दिया वहीं पर बैठ जाते थे, इसलिए सभी लोग तुमको भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। हाँ दादी, वे धार्मिक प्रवृत्ति थी। बचपन से ही मैं अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। शायद यह मेरे पूर्व जन्म के सत्संग या धार्मिक प्रवृत्ति का संस्कार था। बचपन से ही पिताजी के साथ धार्मिक महोत्सवों में जाता, श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने और पिताजी के साथ रामायण महाभारत आदि सुनता था। पिताजी स्वयं शाम को घर के कार्यों से निवृत्त होकर कभी कभी रामायण आदि से अंत तक, तुलसीकृत रामायण आदि से अंत तक और कहीं महाभारत आदि से अंत तक मुझे सुनाते थे। ग्राम के बहुत से लोग श्रद्धापूर्वक उसका श्रवण करते थे। बचपन में मेरा ऐसा संस्कार हो गया कि तुलसीकृत रामायण पढ़कर घंटों रोता था और पढ़ता रहता था। फिर जब रोना बंद हो जाता तो फिर पढ़ने लगता। विशेष करके रामचंद्र जी का वनवास, सीता का त्याग इत्यादि विषयों को, सीता जी का पाताल प्रवेश पढ़कर मैं भाव विभोर हो उठता था। यहाँ तक कि अपने स्वप्नों में भी राम रावण का युद्ध और हनुमान जी की सेवा और हनुमान जी का स्वप्न में दर्शन मुझे होता था। कभी कभी एक बार तो ऐसा देखा कि विमान से राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान मेरे आँखों के सामने उतरे। दिव्य ज्योति झलक रही थी और जब ही मैंने उनका चरण स्पर्श करना चाहा, अंतर ध्यान हो गए। स्वप्न में देखा सवेरे की तरफ, सवेरे जब 4 बजे उस समय में मुझे बहुत आनंद हुआ। स्कूल में पढ़ते समय मैं अपने क्लास में सर्वदा प्रथम या द्वितीय होता था। खेल कूद विशेष करके हाई स्कूल में एडमिशन होने के बाद में एक मील, पांच मील इत्यादि की दौड़ में, लॉन्ग जंप में, हाई जंप, साइकिलिंग रेस, नौका चालन आदि में मैं प्रथम आता था। विशेषकर हाई स्कूल में लंबी दौड़ इत्यादि के लिए कोई भी अपना नाम नहीं लिखाता था, बल्कि दूसरी श्रेणी प्राप्त करने के लिए लिखवा था। वो जानते थे जो वही फर्स्ट आएंगे। संस्कृत संगीत में मैं भाग लेता था और संस्कृत में डिबेट में भी भाग लेता था। 16-17 वर्ष की उम्र में हमारे तिवारीपुर गांव में, ग्राम तिवारीपुर गांव में, एक समय एक माह की भाग श्रीमद् भागवत पाठ आरंभ हुआ। श्रीमद् भागवत के विद्वान वक्ता हम लोगों के कुल गुरु थे। वे बड़े ही संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे। मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा करता, प्रवचन का स्थान ठीक करता, सजाता, उनकी चौकी ठीक करता, भागवत को रख आता और स्थान को भी सजाता था और बड़े ध्यान से उनके प्रवचन को सुनता था। वे प्रत्येक श्लोकों का उच्चारण कर संगीतमय स्वर से वे एक एक श्लोक का उच्चारण करते और उसका प्रवचन करते। गांवों के आसपास के गांवों से भी धार्मिक श्रोता की भीड़ वहां पर होती। अंडरस्टैंड ऑल, भीड़ होती। मेरे पिताजी का उसमें बड़ा योगदान था। वे प्रतिदिन भागवत की आरती सामूहिक रूप में गाते और आरती उतारते और प्रसाद इत्यादि का वितरण करते। अंत जब उसका अंत हुआ भागवत का एक महीने के बाद में, तब हवन यज्ञ हुआ, महाप्रसाद महोत्सव हुआ और भागवत वक्ता मेरे कुल गुरु का मेरे प्रति अत्यंत स्नेह, मेरी सेवाओं से बहुत ही स्नेह हो गया। इसका मेरे जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, भक्ति। मैं भक्ति भाव में सराबोर अब रहने लगा और धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की ओर मेरी रुचि होती गई। एक समय मेरे गांव के पास ही गंगा तट पर स्थित अहल्यावली ब्रैकेट में, जहां पर रामचंद्र जी ने अहल्या का उद्धार किया था और जहां पर कि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम था, जहां पर राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र की यज्ञ के लिए तारकासुर का वध किया था और सुबाहु मारीच को बाणों से मारा था, वहीं पर एक महावीरी झंडा उत्सव हुआ। महावीरी झंडा मीन्स वहां पर हजारों लोगों की भीड़ हुई और वहां पर खेल कूद और पहलवानी के क्या बोले दंगल मैंने रेसलिंग ये भी हुआ, उत्सव हुआ और उसमें बड़े बड़े क्रीड़ा कुशल लोग आए, जिसमें मेरे पिताजी ने भाग लिया। सब विषयों में वे बड़े माहिर थे, माहिर मीन्स योग्य थे। उसमें मैंने प्रथम बार अपने जीवन में मैंने हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे का नगर संकीर्तन देखा और सुना। जिसमें हजारों लोग कीर्तन में नाच रहे थे और कीर्तन कर रहे थे।
गांव के थे ना, बाहर से कहीं आए थे?
बोला ना जहिल्यावली गांव में, वहां से प्राय 3-4 माइल दूर। तो उस समय में मैंने जीवन में सबसे पहला कीर्तन देखा और उसका प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा। एक बार हाई स्कूल में क्लास 9 में क्लास में प्रथम आने तथा संस्कृत डिबेट में प्रथम आने पर पुरस्कार में एक निम्बाक वैष्णवाचार्य का जीवन चरित्र और उपदेश की पुस्तक पुरस्कार के रूप में मिली। उनका वैष्णवोचित आचार व्यवहार और हरिनाम के प्रति अत्यंत आसक्ति उनका कठोर भक्ति साधन को पढ़कर हरिनाम में भी मेरी अब रुचि उत्पन्न होने लगी। नाम में सर्वशक्ति है, ये उस समय उनके जीवन चरित्र से मुझे पता चला। हाई स्कूल में पढ़ते समय इतिहास के हिस्ट्री में मेरी बहुत रुचि थी। उसमें हमारे फुल नंबर आते थे। इतिहास के पुस्तक में श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संक्षिप्त विवरण पढ़कर और उनका घुंघराल और लंबे लंबे बालों को देखकर और कीर्तन का आवेश देखकर मेरे जीवन पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अंडरस्टैंड। तत्पश्चात खेत कूल और क्रीड़ा में कुशल होने के कारण हाई स्कूल छोड़ने के बाद ही बिना प्रयास के ही पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे रख लिया गया पुलिस डिपार्टमेंट में, और सभी अफसर लोग मुझसे बड़े प्रसन्न थे। 3 वर्ष के बाद में, नौकरी करने के 3 वर्ष बाद में, श्री गौड़ीय वेदांत समिति नवदीप की तरफ से श्रील नरोत्मानंद प्रपूज्य चरण श्री श्री नरोत्मानंद ब्रह्मचारी जी, श्री श्री नृसिंह, श्री श्रीमद्भक्ति कुशल नरसिंह महाराज और श्री राधानाथ ब्रैकेट पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज इत्यादि 10-12 जनों की एक टोली पार्टी मेरे सर्विस करने के स्थान पर आई। उस समय मैं बिहार में दुमका जिले के अंतर्गत साहेबगंज नाम के स्थान पर, जो कि गंगा के तट पर स्थित था, वहाँ पर वो लोग आए। हम लोगों के पुलिस ऑफिसर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट DSP बंगाली थे और बड़े धार्मिक चित्तवृत्ति के थे। उनके घर में 7 दिनों तक प्रहलाद चरित्र का उपाख्यान उन्होंने सुनाया। यद्यपि मैं उस समय पूरा बंगला नहीं जानता था, तभी मैं वहां पर बैठा रहता और मेरे श्रद्धा के कारण वक्ता श्री पूज्य पाद श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी का मेरे ऊपर में बहुत ही स्नेह हो गया। और 4-5 दिन तक प्रवचन के बाद में खाना पीना छोड़ करके भी रात भर बैठ करके मुझे हरि कथा सुनाने लगे,
अंग्रेजी भाषा में।
अंग्रेजी इन इंग्लिश। So English, he used to. He was very learned person, especially he was learned in so much a scholar in Srimad Bhagavatam. लिख देना। मैं 7 दिन का सप्ताह सुनकर और उनका स्नेह पाकर मैं संसार से पूर्ण विरक्त व्यक्ति उपस्थित हो गई हृदय में, और मैं उन लोगों के साथी में छोड़कर जाना चाहता था, किंतु मुझे नौकरी से अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अब यहाँ तक कि हमारे एसपी डीएसपी सभी हमसे स्नेह करते थे। उन्होंने कहा जे तुम क्यों छोड़कर जा रहे हो, और बहुत जल्दी ही तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाएगी। मैंने कहा कि नौकरी में उन्नति हो जाएगी, किंतु मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ जिसमें कभी भी घाटा नहीं होता। घाटा नहीं होता मीन्स नो लॉस। सो आई वांट टू डू माय ओन
बिजनेस।
दे कुड नॉट अंडरस्टूड, बट आई टोल्ड देम फॉर फ्यूचर दैट आई वांट टू डू कृष्ण भजन। दे टोल्ड दैट योर फादर मदर आर एग्री, तुम्हारे माता पिताजी इसे सहमत हैं। मैंने कहा जी हाँ, मेरे माता पिता सहमत हैं। मैंने माता पिता गुरुजी को समझा, वैष्णव को समझा, फिर मैंने रिजाइन दे करके और मैं छोड़ दिया और घर नहीं गया, वहीं से वहीं श्री धाम नवदीप में अपने गुरुजी के पास में मैं चला गया। जिस समय मैं रात में 12 बजे नवदीप धाम रेलवे स्टेशन पर आया, तो मैंने सोचा जैसे वहाँ का पता मैं जानता नहीं हूँ, मैं कैसे आश्रम में जाऊँ और रात में भी किसी से कैसे पूछूं। किंतु देखा जी गुरु जी ने जान करके और नरोत्मानंद ब्रह्मचारी जी ने जान करके जो आज आ सकता है ना, जिन्हें कैसे जान लिया, और पूज्यपाद बामन महाराज जी को एक हरिकेन लाइट के साथ में एक ब्रह्मचारी को मुझे ढूंढ करके लाने के लिए भेज दिया। मैंने देखा जी हमारे पास वो आ गए, मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अनायास ही वहाँ पर पहुँच गया, मठ में आ गया। वहीं पर नरोत्मानंद जी, ब्रह्मचारी जी और हमारे गुरु जी और बहुत से वैष्णव लोग वहाँ पर उपस्थित थे। नवदीप धाम परिक्रमा होने वाली थी, इसलिए मैं वहीं पर रह गया, और वहाँ के मठ के इंचार्ज गुरु जी के गुरु भ्राता श्री नरहरि ब्रह्मचारी जी और नरहरि ठाकुर जी थे, जो प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अत्यंत प्रिय थे और मठ की माता जी कहलाते थे, सबका ध्यान रखते थे, विशेष करके बच्चों का, और दिन रात हरिनाम किया करते। अपनी चोटी ऊपर बांध करके रात में जैसे नींद न आ जाए ऐसे हरिनाम करते, और दिन भर कहीं भी जाते हरिनाम करते रहते थे। तो उनका स्नेह मुझे मिला, मुझे बहुत लाड़ प्यार करने लगे, और मैं वहाँ पर हरिकेन जलाना और बर्तन मांजना, झूठा बर्तन मांजने लगा बिना किसी के कहने से, और वहाँ की सब सेवाएं हमने वहाँ पर करना आरंभ कर दिया। नवदीप धाम की परिक्रमा हुई, और उस समय में परिक्रमा के बाद में मैं मेरी हरिनाम और दक्षिणा दीक्षा दोनों एक साथ में हुई। कुछ दिनों के पश्चात गुरु जी मेरी सेवा से और वहाँ के सेवा के कार्यों से प्रसन्न होकर और हरि कथा श्रवण में रुचि देकर उन्होंने अपने पास मुझे रख लिया, और अपनी व्यक्तिगत सेवा में और हरि कथा श्रवण सुनाने में उन्होंने रख लिया। मैं धीरे धीरे उनकी रसोई भी बनाने लगा, कपड़े भी धोने लगा और उनकी हरि कथा सुनने लगा। मुझे ये ज्ञान नहीं रहा कि मैं भी पुलिस ऑफिसर था, सब कुछ छूट गया। कुछ दिनों के बाद में बैद्यनाथ धाम की परिक्रमा आरंभ हुई, करीब करीब कार्तिक के महीने में उसी वर्ष 1947 में, और उसी समय में अच्छा उसके पहले मैं चुचुड़ा में गुरु जी के साथ में चुनसुरा गौड़िया मठ में गया, और वहीं पर मैं उनकी कथा रोज सुनने लगा। वहां सेवा करने लगा और उसी समय में भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी से मेरी भेंट हुई और गुरु जी ने उनकी सेवा में भी लगा दिया। मैं उनको खाना पीना देना सब करता था और उसी समय उनको स्नान कराने के लिए पास ही में गंगा जी में जाता और हमारा एकमात्र साथ में एक लोटा हमारा रह गया था जो पूर्वाश्रम से लाया था। एक दिन हम लोग स्नान करने गए तो लोटा भी गंगा नदी में वो बह करके चला गया। मैंने सोचा जो अच्छा हो गया, रही सही आसक्ति भी अब दूर हो गई। 6 महीने के बाद में कार्तिक के महीने में ब्रजमंडल बैद्यनाथ धाम की परिक्रमा हुई। मैं भी गुरु जी के साथ में परिक्रमा में वहां पर गया और परिक्रमा हुई। तत्पश्चात मैं अनंग मोहन ब्रह्मचारी जो गुरु जी के साथ में रहते और कीर्तन करते थे, उनको राजक्षमा टीबी का रोग हो गया, केवल अस्वस्थ हो गए और उनकी सेवा में मैं नियुक्त हो गया। मैं उनके दूर से औषधि लाता, यहाँ तक कि उनकी टट्टी इत्यादि भी साफ करता और बहुत सी सेवाएं करता था।
पता नहीं चला यक्षमा हो गया था,
पता चल गया। गुरु जी के गोदी में वो जहाँ पर था वहीं पर उसको खून की बोमी होने लगी। फिर वहाँ पर कलकत्ते में डॉक्टर दिखलाया, होम्योपैथिक जहाँ हम लोग रहते से सीधा बाड़ी में दिखलाया, बहुत नामी डॉक्टर। फिर मैं उनकी सेवा करने लग गया। परिक्रमा से कुछ दिन बाद बैद्यनाथ धाम की परिक्रमा के कुछ दिन बाद मेरे एक गांव के नाते भाई लगते थे, वे वहां रेलवे में गार्ड की नौकरी करते थे, गार्ड यू नो इन रेल। वो एक दिन अपनी ड्यूटी में आ रहे थे और हमको उन्होंने रेलगाड़ी में देखा। देख करके हम उन्हें वे बड़े प्रसन्न हुए और मुझे अंक से लगा लिया, आलिंगन किया और बोले जो तुम इतना दिन तक रहा कोई खबर नहीं दिया, आजकल तुम लोग कहाँ हो। तो मैंने अपना पता बता दिया, सीधा सीधा था, बतला दिया। उन्होंने गांव में टेलीफोन उसी समय कर दिया, टेलीग्राम, और गांव से हमारे माता पिता भाई बंधु मेरी स्त्री और ग्राम के बड़े बड़े लोग
सब लोग
वहां पर 10-15 लोग वहां पर उपस्थित हुए और जहां ठहरे थे हम लोग जहां ठहरे थे वहां पर गए। बहुत तरह से समझाया, मेरी स्त्री भी आ गई और मेरी मैया जोर से रोने लगी। मैंने कहा कोई चिंता मत करो, अभी मैं चलता हूँ। जद्दीप उस समय मैं बीमार था, किंतु बीमारी की स्थिति ये ठीक चल रहा है कि नहीं देखिए, बीमारी की स्थिति में भी मैं गुरु जी को प्रणाम कर और मैं चला गया, घर लौट गया। घर लौटने पर बड़े उल्लास से बैंड बाजा और उल्लास के साथ में हमारी माता और घर के सब लोग भगवान के लिए पूजा करने गए और सब में उल्लास के साथ में प्रसाद वितरण किया गया और गांव में चारों तरफ में सब लोग हमको देखने के लिए आने लगे
आसपास गांव के।
दूसरे दिन हमारे पिताजी ने आसपास के गांव के प्रधान सरपंच पंच धनी मानी शिक्षित सभ्रांत बड़े विद्वान सबको वो बुला करके एक बड़ी भारी सभा की, और जिसमें उन लोगों ने मुझे, कुछ लोग तो मुझे कौतूहल से देखने के लिए आए, बहुत से हमारे साथी स्कूल के भी कौतूहल से देखने के लिए आए। उस समय मुझे समझाया, बहुत बुझाया कि घर गृहस्थी में रह करके धर्म का पालन करो। बहुत लोगों ने महाभारत और रामायण से उदाहरण दे करके उदाहरण प्रस्तुत किया। किसी ने कहा प्रहलाद महाराज भी तो गृहस्थी में थे, पांडव लोग भी तो गृहस्थी में रह करके साधन भजन किया, उनकी तरह में रह करके घर में साधन भजन करो। मैंने उत्तर दिया, यहाँ पर साधु संग नहीं और ऐसी शिक्षा नहीं जिससे कि भक्ति का साधन भजन हो सके, ये मेरे लिए संभव नहीं है। बिना साधु संग के मैं नहीं रह सकता। किसी ने कहा ब्रह्मचर्य, यहीं रह करके घर गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन कर, तुम्हारे पितामह की भांति महाबलवान बनो, धार्मिक बनो। तुम्हारे पितामह बैलगाड़ी में, कहीं बैलगाड़ी कीचड़ में धस जाने पर बैलों को हटा करके खुद अकेले अपने हाथों से खींच लाते थे।
मामा, मायर, चाचा
ना, हमार पितामह, पिता, पिता। He was so strong that if any bellgaadi, bullock cart, used to go deep in kitchen,
stuck in mud,
and the bulls could not
pull it out. He was so strong.
Then he used to take them out and taking in hands, and he used to take it out. Sometimes, your pitamah was so
strong
that even two big bhaisa,
buffalo,
quarreling each other to take their lives, but he used to वो अपने हाथी में, हाथ में डंडा लेकर और इसको इधर से मारा, उसको उधर से मारा, और दोनों प्राण बचा करके भाग जाते थे। इस तरह से तुम बनो। मैंने कहा बलवान बन करके क्या होगा, हाथी भी तो बलवान होता है। हाथी बलवान तो होता है, बिना भक्ति का बल किस प्रयोजन का, इसलिए मैं वैसा बलवान नहीं होना चाहता, मैं तो भक्ति में बलवान होना चाहता हूँ। किसी एक ने पूछा, हमारे चाचा जी दूसरे गांव के सरपंच, बहुत प्रधान आदमी और बहुत उम्र की, उम्र में 70-75, बहुत विद्वान, उन्होंने पूछा, अच्छा ये बतलाओ तुम तब तो साधु हो गया है, तो विशिष्टा द्वैत बात किसे कहते हैं बतलाओ। मैंने कहा विशिष्टा बात जानने के पहले आपको केवला द्वैत बाद, तब फिर विशिष्टा द्वैत बाद, भेदा भेद बाद और शुद्ध द्वैत बाद समझना होगा। केवल इतने से नहीं, अचिंत भेदा भेद भी आपको समझना होगा। और तब फिर मैंने एक एक को केवला द्वैत बाद किसे कहते हैं, केवल निराकार निर्विशेष निरंजन निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अद्वैत, केवल अद्वैत बात कहते हैं। जीव और जड़ से विशिष्ट परब्रह्म को, के तत्व को, ब्रह्म तत्व को विशिष्टाद्वैत बात कहा। यह रामानुज का है, पहला वाला शंकराचार्य का केवल अद्वैत, और इसके बाद में केवल अद्वैत बात, नहीं भेदा भेद बात, यह मध्वाचार्य जी का है। ब्रह्म से हमारा भेद भी है, अभेद भी है, पांच विषयों में भेद है या नित्य है, जीव ईश्वर, जीव जीव ईश्वर, जड़ 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 और जड़ और ईश्वर, यू कैन डिस्क्राइब इट फुल्ली। इसमें ये सब तो बाद हैं, किंतु अचिंत भेदाभेद ये तत्व है जो श्री चैतन्य महाप्रभु का है, इसमें सारे जितने हैं मतवाद अद्वैत वाद सब इसी में आ जाते हैं, और यह पूर्ण भक्ति प्रधान है। हम लोगों का यही अचिंत भेदावाद है, हमारे गुरु जी का भी यही विचार। वे उठ करके और मुझे आलिंगन उन्होंने किया और बोले, तुम यथार्थ गुरु पाया और साधु संग पाया है, तुम्हारा वैराग्य भी सच्चा है और तुम्हारा तत्व ज्ञान भी पूर्ण है, मैं तुमसे कुछ नहीं अब कहूंगा। इसके बाद में सब लोग, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। आज यहीं तक, थैंक
यू।
नाउ यू कैन गो, next day you can come, and when I will write something points, and then
is this time good tomorrow at 3:30? Is this time convenient for you?
I will see if I am ready. It will take so much pages. You can define other things also in the dialogue between me and others. You can write that I told labdhasu dar labami dam bahu sham. Bhakti ke bina jivan bekar ka hai. Aur baad mein main aur batlaunga. What doing? You can elaborate. Thank you.